नमस्कार, प्रिंट पॉड में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आपको सुना रहा हूं प्रवीण स्वामी का आर्टिकल, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे अफगानिस्तान में जंग के हालात ख़त्म नहीं हो रहे और आईएस अब कबीलाई जंग में जुट गया है। कहानियां रक्से मुर्दा के बारे में बताती हैं। रक्से मुर्दा यानी खौलता हुआ तेल उड़ेलने पर तांडव नृत्य करते हुए कटे हुए सिरों वाले ताजे शव। 1993 में जब अफगानिस्तानी गुटों में होने वाली सत्ता की जंग बर्बर कबीलाई लड़ाई में बदल गई, तो प्रमुख मुजाहिदीन गुट काबुल में गरीब हजारा लोगों के खिलाफ एकजुट हो गए। कहा जाता है कि कई मर्दों के सिरों में कीलें ठोक कर उन्हें मार डाला गया। कुछ और को शिपिंग कंटेनरों में जिंदा जला दिया गया। वहाँ हजारा बहुल अफशार इलाके में हजारों लोगों का कत्ल हुआ। इधर कुछ महीनों से खासकर शिया हजारा समुदाय के खिलाफ जारी हिंसा से यह आशंका गहरी हो गई है कि कहीं फिर कत्ले आम के दिन तो नहीं आने वाले। पिछले कुछ दिनों में ही हजारा स्कूली बच्चों पर बम फेंके गए, मजार शरीफ में मस्जिद पर हमले हुए और उसके पहले हजारा समुदाय वाले काबुल के इलाके दश्ते बारची में कई हत्याएँ हुईं। ऐसे दूसरे समूहों पर भी हमले हुए जिन्हें इस्लामिक स्टेट और दूसरे इस्लामिक गुट विधर्मी मानते हैं। सुन्नियों के इस्लाम से जुड़े कुंदूज की एक मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान बम धमाके धार्मिक तथा स्थानीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे व्यापक हमलों का ही हिस्सा हैं। इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान में अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए कबीलाई मजहबी नफरत की भावनाओं को गहरी कर रहा है। उसका मकसद मौजूदा इस्लामी अमीरात का तख्ता पलट करना है और इसमें उसे अफगानिस्तान में भारी आर्थिक तंगहाली, इस्लामी लड़ाकों में घर कर रहे असंतोष और तालिबान में गहरे मतभेदों से मदद मिल रही है। काबुल में हजारा मोहल्ले की दीवारों पर 2015 के शुरू से ही पोस्टर चिपकाए जाने लगे कि शिया काफिर हैं। उसी साल मार्च में एक जिहादी गुट ने एक शिया मस्जिद पर बम से हमला किया, जिसमें एक आदमी की जान चली गई। अब ऐसे हमले लगभग आम हो गए हैं। जाबुल, बल्ख और गजनी में बम धमाके हुए। ऐसी कुछ वारदातों में औरतें और बच्चे भी मारे गए। 2016 में एक मजहबी जुलूस, एक मस्जिद और एक राजनीतिक प्रदर्शन पर हमले हुए, जो प्रमुख तौर पर हजारा बिरादरी का था। सीरिया में लड़ाई के लिए पहला अफगान जत्था तकरीबन 2012 में रवाना हुआ। उसमें तालिबान और उसके पाकिस्तानी संस्करण तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के लोग थे। मसलन TTP नेता हाफिज सईद खान ने अलनुसरा देश में अलकायदा से जुड़े संगठन के साथ लड़ने के लिए 100 वॉलंटियर को रवाना किया। अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात के वस्तुतः दूसरे नंबर के नेता सिराजुद्दीन हक्कानी ने भी कुछ 100 वॉलंटियर रवाना किए। अफगान खुफिया एजेंसियों ने 2014 के आखिर में ये रिपोर्ट देनी शुरू की कि इस्लामिक स्टेट ने कुनार में अपने खुद के ट्रेनिंग कैंप बना लिए हैं और फराह तथा नंगरहार जैसे इलाकों में लड़ाकों के छोटे छोटे दल भेजे हैं। हजारा बिरादरी पर हमले 2018 में और तेज हो गए। काबुल में हजारा बिरादरी से जुड़े संस्थानों पर घातक हमले हुए, जिनमें से एक कुश्ती का अखाड़ा और एक ट्यूशन सेंटर भी था। हालांकि उसके बाद इस्लामिक स्टेट का अभियान खत्म हो गया। विद्वान अफसंद यार मीर ने लिखा कि वजह थी तीन तरफ अमेरिकी फौज, पूर्व अफगान सरकार और अफगान तालिबान की ओर से हमले। फिर अफगान गणतंत्र जब बिखरने लगा तो इस्लामी स्टेट की हिंसा में तेजी आई। मई 2021 में सईदुल शुहादा हाई स्कूल पर हमले में 85 लोग मारे गए। अगस्त में एयरपोर्ट में फिदायीन हमले में 70 से ज़्यादा लोग मारे गए। उसमें वो शख्स भी शामिल था जो कभी नोएडा में इंजीनियरिंग का छात्र था और उसे भारत के खिलाफ हमलों की साजिश रचने के लिए पकड़ा गया था, लेकिन बाद में तालिबान ने उसे छोड़ दिया था। अक्टूबर में कुंदूज में गोजारे सईदाबाद की मस्जिद में एक फिदायीन हमले में 80 नमाजी मारे गए थे। उसके एक हफ्ते बाद दो फिदायीन ने कंधार की बीवी फातिमा मस्जिद में खुद को उड़ा लिया, जिसमें 40 से ज़्यादा लोग मारे गए। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि डेबोराह लियोन ने दर्ज किया कि लगता है कि इस्लामिक स्टेट अब लगभग सभी प्रांतों में मौजूद है और लगातार सक्रिय है। उन्होंने कहा कि पिछले साल इस्लामिक स्टेट के हमले 3 गुने से ज़्यादा हो गए, जिससे अचानक उसकी काबिलियत में इजाफे का पता लगता है। बाकी वजहों के अलावा इस्लामिक स्टेट के फिर से जी उठने की वजहों में कुछ हद तक सियासत का भी लेना देना है। तालिबान की फौजी जीत की अगुवाई तथा कथित सिराजुद्दीन हक्कानी के पूर्वी तालिबान ने की, जिसके TTP और अलकायदा तथा इस्लामिक स्टेट के तत्वों से दशकों पुराने संबंध रहे हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई अनस हक्कानी और उनके चाचा खलीलुर रहमान हक्कानी ने पिछले साल अफगान गणतंत्र के खात्मे में प्रमुख भूमिका निभाई थी। हालांकि नए इस्लामी अमीरात सरकार में उन शख्सियतों का दबदबा है जो 9/11 के पहले ओहदों पर थे। ये खासकर दक्षिण अफगानिस्तान के हैं। हेलमंड के रहने वाले तालिबानी रक्षा मंत्री अब्दुल कयूम जाकिर पहली अमीरात सरकार में थे। इसी तरह गृहमंत्री इब्राहिम सद्र, वित्त मंत्री गुल अखा इशकजई और दूसरे कई भी थे। विद्वान डॉन रैसलर और वाहिद ब्राउन ने लिखा कि पाकिस्तान के ISI की मदद से 1970 के दशक में स्थापित लड़ाके सिराजुद्दीन हक्कानी के नेटवर्क ने अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में जिहादी मुहिम की नींव रखी। उनकी हैसियत अकोरा खट्टक के मदरसे पर उनके नियंत्रण से पता चलती है, जो अरब और दूसरे देशों के जिहादियों का केंद्र था। विद्वान थॉमस रुप्टिग ने दर्ज किया कि हक्कानी की जिहादी साख के बावजूद पहली अमीरात सरकार में ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। उनका असर पक्टिका, पक्तिया और खोस्त प्रांतों में ही केंद्रित था। तालिबान के दिग्गज मुल्ला मोहम्मद उमर के करबी कंधारियों ने हक्कानियों को दूर ही रखा। इसके अलावा पूर्वी कबीले अमूमन दो सबसे बड़े पख्तून कबीलों दुर्रानी और गिलजई से भी नहीं जुड़े हैं। येलेना बीबरमैन और जारेड स्चवार्ज ने लिखा है कि दोनों गुटों के बीच तनाव कम से कम 2016 से है, जब तालिबान अमीर हिब्तुल्ला अखुंदजादा ने तालिबान ताकतों की कमान हक्कानी और मोहम्मद याकूब में बांट दी। याकूब मारे गए पहले अमीरात के दिग्गज मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे हैं। इससे हक्कानियों का फौज पर नियंत्रण नहीं रहा, जिसके वे प्रमुख हिस्से थे। पिछले साल विद्वान एंटोनियो गोइस्तोजी ने चेताया था कि अगर सत्ता में वाजिब हक की पूर्वी तालिबान की मांग नहीं मानी गई तो वह चुपचाप इस्लामिक स्टेट की मदद करेगा। इस्लामिक स्टेट को बड़ी संख्या में उन निराश नौजवानों जिहादियों का भी समर्थन है जिन्होंने महसूस किया कि काबुल की सत्ता के पतन से तालिबानियों को तो ओहदे और हैसियत मिल गई, लेकिन बाकी लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे नौजवानों के लिए इस्लामिक स्टेट लगातार जंग और इस तरह के रोज़गार की पेशकश कर रहा है। इतना तो आईने की तरह साफ है कि हजारों लोगों की हत्या इस्लामिक स्टेट की खोज नहीं है। 1998 में मजार शरीफ में जब हजारों लोगों का कत्लेआम चल रहा था, तब बल्ख प्रांत के गवर्नर तालिबान कमांडर मुल्ला अब्दुल नियाजी तालिबान ने कहा था, हजारा तुम कहाँ छुपोगे, तुम हवा में उछलोगे तो हम तुम्हारी टांग पकड़ लेंगे, अगर ज़मीन में छुपोगे तो हम तुम्हारा कान पकड़ लेंगे, हजारा मुसलमान नहीं हैं, तुम उन्हें मार सकते हो, ये पाप नहीं है। तालिबान कमांडरों ने उन्हें चरागाहों से भगा दिया, उनके घरों पर कब्जा कर लिया और सैकड़ों को बंधक बना लिया। आधुनिक अफगान राज्य के संस्थापक अमीर अब्दुल रहमान खान ने 19वीं सदी में हजारा बागियों का बेरहमी से सफाया किया, उनकी ज़मीन पर पख्तून कबीलों को बसाया और हजारों को गुलाम बना लिया। शुरू से ही इस्लामिक स्टेट के नेता ने अपना दबदबा कायम करने के लिए स्थानीय धार्मिक खाइयों को भुनाना शुरू किया। इराक में इस्लामिक स्टेट की नींव रखने वाले अफगानिस्तान में ट्रेनिंग पाए अहमद फदील अल खायलेह ने फरवरी 2014 की चिट्ठी में शियाओं को फन उठाया सांप, विषैला बिच्छू, दुश्मन का जासूस और जहर बुझा बताया था। ऐसी सियासत का अपना दायरा है। 9/11 के बाद हजारा बिरादरी ने शिक्षा और रोजगार के फायदे हासिल किए। इससे ग्रामीण पख्तून एलीट में नाराजगी उपजी। जमीन और सिंचित भूमि को लेकर पहले से विवाद थे, फिर काबुल के उदार शहरी माहौल में हजारा औरतों की कुछ ऊंची हैसियत से तालिबान के समर्थकों में डर और जलन पैदा हुई। हजारा विरोधी मुहिम के पीछे सत्ता संघर्ष असल में क्या शक्ल लेता है, यह अभी साफ नहीं है। इस्लामिक स्टेट की जड़ में मार डालने के तालिबान की जोरदार कार्रवाइयों से पूर्वी नांगरहार क्षेत्र में कई हत्याएं हुईं। ओवेद लोबल ने लिखा है कि इस्लामिक स्टेट को जैसा बर्ताव मिला, वो यानी इस्लामी अमीरात के अफसरशाहों और अधिकारियों को निशाना बनाकर उसी तरह का जवाब दे रहा है और अफगानिस्तान में लगातार जारी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सुनने के लिए धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे प्रिंट पॉड के एक नए एपिसोड के साथ।